سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے انعام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی صلی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید کے پرمسرت لمحات مدنی چینل کے ساتھ مدنی چینل لایا ہے آپ کے لیے اسورٹڈ سلسلے پروگرامز مختلف موضوعات پر، آپ ہمارے ساتھ رہیے. اینڈ اور ٹاپک از، ہمارے سلسلے کا موضوع ہوگا فطری اور غیر فطری زندگی، نیچرل اینڈ ان نیچرل ویز آف لائف. لیٹ اسٹارٹ ود سم اسٹارٹلنگ فیکٹس. 30 اپریل سن 2018 سندھ کے شہر نواب شاہ میں 50.2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت نوٹ کیا گیا. دا واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پوری دنیا میں اپریل کے مہینے میں اتنا زیادہ درجہ حرارت کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا جب سے ویدر فورکاسٹ کا کام شروع ہوا. یہ مشین، سمارٹ فون، یہ موبائل فون دن میں بعض ممالک کے اندر 2617 دفعہ ایک آدمی اس کو ٹچ کرتا ہے آن دا ایوریج، جبکہ بعض لوگوں میں یہ ٹچ کرنے کی ریشو 5400 سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آج میڈیکل کی بکس میں، ڈکشنریز میں کئی نئے الفاظ، بیماریاں، جرگنز اس موبائل فون کی وجہ سے ایجاد ہوئے. انسان کی زندگی پہیوں پر، ایسکلیٹرز یعنی خود کار سیڑھیوں پر اور لفٹ پر زیادہ گزر رہی ہے، واکنگ کرنے کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اگر ٹریش، کوڑا اسی مقدار میں پیدا ہوتا رہا، جنریٹ ہوتا رہا، تو بالخصوص پلاسٹک سن 2050 میں دنیا کے سمندروں میں پلاسٹک زیادہ ہوگا اور مچھلیاں کم ہوں گی. لوڈز اینڈ لوڈز آف انفارمیشن، جتنی ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں موبائل فون پر، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، اتنی انسان کو زیادہ نوٹیفیکیشنز ملتی ہیں. توجہ کے ساتھ مکمل بات سننے کا رجحان اور سمجھنا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سرسری طور پر بس تھوڑی سی بات کو سن لیا، پڑھ لیا اور وداؤٹ پروسیسنگ اس کو فارورڈ کر دیا، یہ انداز زندگی بن رہا ہے. سن 2040 تک ایک ریسرچ کے مطابق شوگر کے مریضوں میں 40% اضافہ ہو جائے گا، اور سن 2000 سے 2015 تک 40.2% کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز یعنی دل اور اس سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں ان میں 42% تک اضافہ ہوا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹسٹکس، یہ اعداد و شمار ان ممالک کی ہیں جہاں پر صحت کے شعبے پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. دنیا کے بہت سے ممالک جو معاشی طور پہ سٹرونگ ہیں، اکنامیکلی وائبل ہیں، وہاں پہ آبادی کی شرح بہت کم ہو رہی ہے. جو بچوں کی پیدائش کی شرح ہے اس میں بہت کمی آ رہی ہے، اور ان ملکوں کو مین پاور یعنی افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے. اور آج ایک انسان کو جتنی فکریں ہیں، جتنی ٹینشن ہے، جتنا ڈپریشن ہے 2018 میں، 1950 میں ایسی صورتحال والے انسان کو ذہنی مریض سمجھا جاتا تھا. تب کام اتنے نہیں تھے، اتنے ٹاسک نہیں تھے، اتنی مشینز نہیں تھی، اور آج انسان مشینوں میں گھرا ہوا ہے. اور آج میرے مدنی چینل کے ناظرین، بچوں میں اگر دیکھا جائے موٹاپا، وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی، ڈپریشن، وائٹامن کی کمی، یہ بڑھتی جا رہی ہے. کچھ تو ہے جو ٹریک سے ہٹ رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے ٹو اڈاپٹ ان نیچرل ویز آف لیونگ اینڈ لیو دا نیچرل اینڈ پیور ویز. فطری اور صحیح طریقوں کو چھوڑ کے غیر فطری انداز سے زندگی بسر کی جا رہی ہے. और हमारे सिलसिले का मौजू भी ये है, हमने आपसे पहले शेयर किया था, और आज हमारे साथ हैं कुछ प्रोफेशनल इस्लामी भाई। मेरे सीधे हाथ पर हैं अली भाई, इंजीनियर हैं, अकील भाई जो कि एक सरकारी कॉलेज के अंदर लेक्चरर हैं, टीचर हैं, और मेरे दिल की तरफ डॉक्टर सामा हैं, डॉक्टर साकिब हैं, ये MBBS डॉक्टर हैं और पीड्स मेडिसिन में स्पेशलिस्ट हैं। लेट्स स्टार्ट। जी अकील भाई, फितरी और गैर फितरी जिंदगी कैसे स्टार्ट लेंगे आप?
फितरी और गैर फितरी जिंदगी में फर्क को हम इस तरह से, इस मिसाल से समझ सकते हैं कि वो जंगली जानवर जो कि जंगल में रहने के फितरी तौर पर आदि होते हैं, उनकी प्रॉपर जिंदगी जंगल में रहना से ही बसर होती है, जंगल में शिकार करके खाते हैं। अगर इन जंगली जानवरों को जंगले में कैद कर दिया जाए तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बाज जानवर जंगले के अंदर एक से दूसरे कोने की तरफ मुसलसल चक्कर लगा रहे होते हैं, बाज जानवर अपने ही जंगले के बाज को बाइट करना शुरू कर देते हैं, बाज मुसलसल उछल कूद करते रहते हैं। ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है जो सिर्फ उनके कैप्टिविटी में, कैद में आ जाने की वजह से पैदा हो जाता है।
यानी वो जानवर जब वाइल्ड एनवायरमेंट से निकाला गया, चिड़िया घर में या पिंजरे में रखा गया, तो उसका वो रवैया नहीं रहा।
जो फितरी तर्ज जिंदगी में उसका रवैया था, वो प्रॉपर रवैया वो गैर फितरी अंदाज में बरकरार नहीं रख सका। इसे ज़ूकोसिस कहते हैं। इसी तरह इसको हम एक आम मिसाल से भी समझ सकते हैं कि आप ये कह लें कि जिस चीज को जिस मकसद के लिए बनाया गया है, उस मकसद के तहत उसी मसरफ में इस्तेमाल करेंगे तो वो मुनासिब अंदाज में प्रॉपर नफा देगी। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है जो चार सवारियों को बिठाने के लिए बनाई गई है, इसी गाड़ी के पीछे अगर ट्रक बांधकर खींचना शुरू कर देंगे तो ये ज्यादा देर नहीं चल सकेगी।
फितरी और गैर फितरी जिंदगी में हम ये देखते हैं कि वो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है उसमें प्रॉफिट ज्यादा है और उस चीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है। मदनी चैनल के नाजरीन, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा हो गई है। ये जो मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है, इंसान अपने ओरिजिनल टास्क पर फोकस करना चाहता है, यानी जो उसका टास्क है उसने बैठ के करना है, लेकिन फोकस हो नहीं पाता। इधर उधर से डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं, नोटिफिकेशन आ जाती है, और फिर अगर इस बात को लिटिल पास्ट में देखा जाए, थोड़ा सा माजी देखा जाए, तो इतनी डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी, इतना ज्यादा इंसान अपने खास काम से हटता नहीं था बल्कि उस पर फोकस कर लेता था। अली भाई, ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस हवाले से आप कुछ शेयर करेंगे?
जी सुमन भी, अभी जो जैसे अभी डिस्कशन हो रही थी कि हम नेचुरल जो वे ऑफ लाइफ है उससे दूर होते जा रहे हैं, अब जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ये मोबाइल फोन हैं, ये स्मार्टफोन्स हैं, इनका बहुत ज्यादा यूजेज है, टीवी चैनल्स बहुत ज्यादा हैं, न्यूज की एप्लीकेशंस हैं, गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, इसी तरह हर वक्त जो है वो नई से नई अपडेट लेने का एक रुझान जो है उसके लिए गैजेट्स नए नए डेवलप हुए हैं, तो इन चीजों की वजह से और बहुत ज्यादा जो है वो एक जो नेचुरल वे ऑफ लाइफ है उससे हटने की वजह से डिस्ट्रैक्शंस तो आ रही हैं, फोकस नहीं रह पाता, हर वक्त माइंड में ये चलता रहता है कि जो नई से नई अपडेट आ रही है मुझे उसका पता चल जाए, कहीं मैं मिस ना कर जाऊं उसको। इसी तरह मोबाइल फोन का जैसे आपने अभी बताया कि बहुत ज्यादा यूजेज है, एक दिन में कितने कितने हजार दफा जो है वो उसको देखा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन तो आएगी।
या पहले भी मैं आपसे एक शेयर करता चलूं, एक फियर होता है उसको कहते हैं फोमो, FOMO, बकायदा ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड किया गया। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी ये डर रहता है कि मुझसे कोई मिस ना हो जाए, जैसे ही मैसेज की बीप बजी या कोई और सोशल मीडिया साइट या एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आई, बंदा फौरन उसकी तरफ तवज्जो देता है और देखता है कि वो कोई मिस ना हो जाए, हालांकि वो जो चीज मिस कर रहा है वो ज्यादा जरूरी है और जिस चीज की तरफ जा रहा है वो इतना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करते हुए उसको मैसेज की बीप सुनाई दी, मैसेज खोला, मैसेज सिर्फ ये था क्या हाल है, कब पहुंचेंगे, बस। और सामने उसने जब ड्राइविंग करते हुए विंड स्क्रीन से नजर हटाई, सामने गाड़ी क्रैश हुई और उससे जो नुकसान हुआ, जारी बात है वो नुकसान तो नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आती चली जा रही हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, एक और अंदाजे जिंदगी वो खालिस अशिया का फुकदान है, खालिस अशिया खाने का रुझान कम होता चला जा रहा है। रिसर्चेज आती हैं, अचानक को इन्वेस्टिगेशन हो जाती है कि जो ईटेबल्स हैं, स्टेपल्स, दालें, आटा, चावल और दीगर खाने की अशिया, इसमें मेडिकल इश्यूज रिपोर्ट होते हैं, और इसका लिंक भी हम किसी हद तक गैर फितरी तर्ज जिंदगी से कर सकते हैं कि वो अंदाज जल्दी पक जाए या जल्दी जल्दी हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर साहिबान भी हैं, मैं आपसे पहले ये शेयर करता हूं डॉक्टर सामा के 2024 तक शुगर यानी डायबिटीज के मर्ज में 24% तक इजाफा हो जाएगा अगर यही हाल रहा, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के अंदर दिल के अमराज में 40% तक इजाफा हो जाएगा। जबकि ये उन ममालिक में हो रहा है जहां पर सेहत के शोबे पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इस हवाले से आप कुछ फरमाएं?
देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा गैर फितरी अंदाज़े जिंदगी है। इसके मिसाल हम इस तरह से समझेंगे कि पहले के दौर में इस तरह से होता था कि लोग सुबह सुबह घरों से निकलते थे, खेतों में जाते थे, पैदल चलते थे, वर्कआउट करते थे, मेहनत करते थे, और जो शहरों के लोग थे वो भी जब जाते थे अपने काम पे तो यूजुअली पैदल चलकर बस तक जाना, फिर बस से उतरकर फिर आगे पैदल चल के अपनी मुकर्रर जगह तक पहुंचना या साइकिल पर जाना। मोटरसाइकिल भी बहुत कम लोगों के पास होता था, गाड़ी तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन अब मौजूदा दौर में आप देखते हैं सड़कों के ऊपर गाड़ियों का रश है, मोटरसाइकिलों का रश है, लोग पैदल चलना गवारा ही नहीं करते। अपने आप को जो शख्स पैदल चल रहा है वो ये समझता है कि मेरे पास अगर काश गाड़ी आ जाए तो मैं गाड़ी में ही जाऊं, यानी कि वो मजबूरी के तहत ही पैदल चल रहा होता है। कोई साइकिल पे है तो मजबूरी के तहत ही, जैसे ही उसके पास इतने पैसे आएंगे वो गाड़ी ले लेगा और गाड़ी के अंदर आरामदेह जिंदगी की तरफ।
मैं यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चला हूँ मदनी चैनल के नाजरीन के लिए और आपकी जो बात को सपोर्ट करते हुए, बात ममालिक ऐसे हैं जहां पर गाड़ी खाली आप एक खास वक्त में उस शहर में या मुल्क में एंटर ही नहीं हो सकते। अगर फोर सीटर गाड़ी है तो उसमें आप कोई ना कोई सवारी साथ जरूर बिठाएंगे, तो आप ये फरमा रहे हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि गाड़ी पर ही जाए।
जी, तो बास कंट्रीज के अंदर तो उन्होंने साइकिल्स के लिए अलहदा ट्रैक्स बनाए हुए हैं कि साइकिल सवार इसके ऊपर चले, ताकि साइकिल को ज्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि लोग साइकिल चलाने की तरफ आए, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी एक्टिव होती है। वो एक्टिविटी जब करती है तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपके जिस्म के जब चर्बी कम होती है तो डायबिटीज का रिस्क कम हो जाता है। एक्टिविटी करने से डायबिटीज का और कार्डियक डिजीज का यानी कि शुगर का और दिल के अमराज का रिस्क कम हो जाता है, और इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मलाइज होने की तरफ आ जाता है। तो नेचुरल तरह जिंदगी जो है ना ये बड़ा जरूरी है।
इस्केमिक हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियों जो है वो पूरी दुनिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, यानी कि सबसे ज्यादा जो अमवात होती है दिल की बीमारियों की वजह से आ रही है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो। इसकी जो एक रीजन मेजर रीजन वो गैर फितरी जिंदगी को अपनाना है, यानी कि वो जो चीजें पहले लोग जमाने में होती थी पैदल लोग चल के अपने दूसरी जगह जाते थे, साइकिल पे करते थे, अब वो टेक्नोलॉजी या तरक्की की वजह से लोगों के पास जो है ना वो चीजें आ गई और वो चीजें अब वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते अपनी डेली एक्टिविटीज, वो बैठे रहना बिल्कुल कोई काम ना करना, इस वजह से अभी ये जो चीजें हैं इट इज लीडिंग टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन रही है। डायबिटीज आपने बताया इतनी शराब उसकी बढ़ रही है कि बेसिक वजह यही कि गैर फितरी जिंदगी जो हमने
डॉक्टर इसमें तो। एक चीज मदनी चैनल के नाजरीन टेस्टिफाई करेंगे कि वाकई कुछ अरसा पहले अगर देखा जाए हमारी जो उम्र में बड़े अफराद हैं उनसे पूछा जाए तो वाकई 40 साल से पहले 30 साल से पहले हार्ट अटैक वॉज ए रेयर फिनोमेना, यानी घरों में मोहल्लों में हर जगह पर 40 साल से पहले हार्ट अटैक के मरीज रिपोर्ट नहीं होते थे या बहुत शाजो नादिर थे, और आज ये काम बहुत बढ़ चुका है। वाकई गैर फितरी अंदाजे जिंदगी
तो 24 साल की उम्र में भी लोगों को सुना है कि हार्ट अटैक हो जाता है, 20 साल की उम्र में भी हो जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर है जिसमें गैर फितरी जिंदगी, स्ट्रेस और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल ये सारी चीजें आती हैं, तो ये सारी गैर फितरी जिंदगी
यानी मेडिकल साइंस की रूह से भी ये अंदाजे जिंदगी इसके ऊपर क्वेश्चन है। मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लाम दीन फितरत है and science also operates within the nature but it has boundaries and limitations. Science bhi fitrat ke usoolon ko hi explain karti hai, uski munasib andaaz se tashreeh kar deti hai nazariyat ki surat mein, laws ki surat mein, but real purpose of science is to make best use of natural resources for the benefit of mankind. Yani science ka asal maqsad yahi hai ki insaniyat ko fayda de, na sirf insaan balki on the whole entire national and natural biodiversity, nibatat hain, janwar hain, in sab ke liye kaam kare, laws banaye. Akil bhai, science aur islam ke hawale se aap yahan pe kuch share karenge.
Dekhen ji, science zanniyat par mabni hai, science asal mein reality ko explore karti hai, science dan apni akal se sochte hue behtar se behtar ki taraf jane ki koshish karte hain. Jahan par hame nazar aaye ki साइंस इस्लाम के उसूलों, शरीयत के उसूलों के ऐन मुताबिक कोई खोज कर चुकी है तो वहां तो हम कहेंगे कि साइंस अपने औजो कमाल पे पहुंच गई। लेकिन अगर हमें कहीं ऐसा नजर आए कि इस्लाम के उसूल कुछ और कह रहे हैं और साइंस में हमें कुछ टकराव नजर आ रहा है तो यकीनन यहां पे साइंस को मजीद डेवलप होने की और मजीद तहकीक करने की जरूरत है।
एंड ऑब्वियसली साइंस हैज इट्स लिमिटेशंस, जिस तरह आपने फरमाया कि नो लॉ ऑफ साइंस डील्स विद द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, यानी एक बात है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और दीगर डिसिप्लिन जितने भी साइंस के हैं ये सब कुछ कहां से वजूद में आया, यानी कुछ ना कुछ नुकता आगाज तो था ही। व्हेन देयर वाज नथिंग, जब कुछ नहीं था, एंड नाउ देयर इज समथिंग, तो जब कुछ वजूद में आ जाता है तो उसका तख्लीक करने वाला कोई होता है, बनाने वाला कोई होता है। तो साइंस जिसके उसूल बनते और टूटते हैं, आज रात को कोई और थ्योरी होती है, सुबह उठते हैं तो कोई और थ्योरी बन चुकी होती है, चेंज आ चुका होता है। ये चीज ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, यानी हर चीज का नुक्ता आगाज क्या है, कहां से शुरू हुई, कहां से बन कर आ रही है या कहां से बन रही है, साइंस के इहाते में ये चीज नहीं आती। जी अली भाई, इस हवाले से आप हमारी को रहनुमाई फरमाएंगे, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इसमें हमारी रहनुमाई होती है।
जिसमें भी जैसे पारा 7 सूरतुल अनआम उसमें है, वो बगैर किसी नमूने के आसमानों और जमीन के बनाने वाला है।
इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि अल्लाह कादर मुतलक है और वही सबका खालिक है, मालिक है, आसमानों और जमीनों को बगैर किसी सैंपल और नमूने के बनाने वाला है। नाउ इन ह्यूमंस दिस इज अ नॉर्म, ये एक तरीका कार है कि जो भी इनोवेशन होती है उससे पहले उसका कुछ सैंपल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्लाह ताला कादर मुतलक है। नाउ अब हम दोबारा से फितरी और गैर फितरी अंदाज जिंदगी में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू को टच करना चाहते हैं, और वो ये कि नाउ अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर लाइफ इज ऑन लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स एंड व्हील्स। डॉक्टर साकिब, हमारी जिंदगी का बहुत ज्यादा जो हिस्सा है वो पहियों पर गुजर रहा है, लिफ्ट पर गुजर रहा है, खुद कार सीढ़ियां आज हर जगह पर लगी हुई, इंसान ऊपर चढ़ जाता है, वापस आ जाता है, पांव को हरकत नहीं देता। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी आरामदेह अंदाज जिंदगी, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे?
जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है वैसे वैसे ही हम सेडेंटरी यानी कि इस लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं जो कि आरामदेह है। अब जितना हम आरामदेह लाइफस्टाइल अपना रहे हैं उतनी ज्यादा बीमारियों में गिरते जा रहे हैं। इसमें जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनमें जो मतलब के काबिल जिक्र हैं उसमें ओबेसिटी है यानी मोटापापन, शुगर, दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर हो जाना, इसके अलावा डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीजें जब एड अप होती हैं तो हमारे बहुत ज्यादा बीमारियों का सबब बनती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्कीमिक यानी कि दिल की बीमारियों की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है, उसमें बेसिकली बहुत मेजर पार्ट जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का है। इसमें जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो यूएस अदारों की जो रिसर्च है उसमें कि अगर आप सारा दिन का अक्सर हिस्सा बैठते हैं तो आप 2 गुना ज्यादा जो है ना वो दिल की बीमारियों में मुबतला होते हैं। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप दिन के अक्सर हिस्से में बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हिलते जुलते नहीं, चलते फिरते नहीं है, तो आपके 54% ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप दिल की बीमारियों में गिरफ्तार होकर मौत का शिकार।
यहाँ पर मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि इन ममालिक में तो बाकायदा स्टैंडिंग डेस्क बनाए जा रहे हैं। स्टैंडिंग डेस्क से मुराद ये है कि वो बड़ा डेस्क होगा, चलो बैठने से तो बेहतर है कि बंदा खड़ा होकर कोई काम कर ले, अपने क्लाइंट्स को डील कर ले।
जी सर, इन्हीं ममालिक में अब ये प्रमोट किया जा रहा है कि भाई आप कार से हटें, आप साइकिल इस्तेमाल करें, साइकिल से जाएं, आप रोजाना वॉक करके जाएं, वहां प्रमोट किया जा रहा है चीज को। जो तरक्की याफ्ता ममालिक इनमें चीजें ज्यादा है,
यानी जो इकोनॉमिकली माशी तौर पर मजबूत ममालिक है जहां पर सेहत पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वहां पर इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि चला जाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, यहां एक बात मैं आपसे शेयर करता चलूं और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। Actually, nature has its writ. Science is actually to restore the natural balance and equilibrium in the system. यानी ये जो फितरी अंदाज है ये बेहतरीन है। एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर की मैं तस्नीम पढ़ रहा था, उसने जुमला लिखा, All our medicines are actually supporting the impeccable power of divinity inside our body. हमारी सारी दवाइयां दर हकीकत इंसान के जिस्म में जो कोते मुदाफियत है, उसके जिस्म का जो दिफाई निजाम है उसको ही सपोर्ट कर रही होती है कि वो निजाम मजबूत हो जाए और बंदा खुद ही बीमारियों से लड़े। तो यहां पर परहेज दवाई से बेहतर है, ये भी हम सुनते हैं। डॉक्टर सामा, ये जो बात मैंने आपसे अर्ज की कि हमारा सारा निजाम दरहकीकत नेचुरल सिस्टम को ही रिस्टोर करने के लिए काम कर रहा है, उसी को बाकायदा चलाने के लिए काम कर रहा है कि उससे हम हट ना जाएं, हट जाएं तो दोबारा उसी पर आएं, इस बारे में आप क्या फरमाते हैं?
आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब इंसान के जिस्म के अंदर कोई भी जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह दाखिल होता है बीमारी को पैदा करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने जो एक हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम पैदा फरमाया कि जो उन जरासीम और बैक्टीरिया के साथ बाकायदा लड़ता है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है और दोबारा से हमारे जिस्म के नॉर्मल फंक्शन है ना उनको रिस्टोर करने की कोशिश करता है। और हमारी जो लेटेस्ट जितनी भी दवाइयां आ रही हैं वो खास तौर पर मोलेकुलर लेवल पर जाके, यानी कि मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर जाकर उन जरासीमों को मारने में हमारे जो कुव्वत मुदाफत का निजाम है उसको हेल्प करते हैं।
बहुत नीचे लेवल पे जाकर,
जी बहुत नीचे लेवल पे जाकर, माइनर लेवल पे जाके कि कहां पे जाकर जो है ना वो हमारा जो कुव्वत मुदाफत का निजाम है उसको इंप्रूव किया जाए कि जिससे हमारी जो जो जरासीम है उनसे लड़ने के अंदर जिस्म को जो है ना वो ताकत मिल सके। तो लिहाजा हमारे जिस्म की जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसी को इंक्रीज किया जाता है। बहुत सारी बीमारियों के अंदर बाकायदा इसके लिए हमें इम्यूनो ग्लोबुलिन देने पड़ते हैं कि जो ऐसी चीजें जो कुव्वत मुदाफत के लड़ा ने जिसम के अंदर पैदा की हैं उसी तरह की जो है ना वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर करके जिसम के अंदर दी जाए ताकि उसी सिस्टम को जो है ना वो इम्प्रूव किया जा सके ताकि वो जरासीम के खिलाफ लड़ सके। न्यूट्रिशन को पेशेंट की जो उसकी जो जिस्म के अंदर वाइटामिन हैं मिनरल्स हैं इनको इम्प्रूव किया जाता ताकि इनकी मदद से हमारा कुव्वत मुदाफत का निज़ाम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो और वो जरासीम के साथ जो है ना लड़।
और डॉक्टर साहब जिस वक्त किसी के फ्रैक्चर होता है उसको भी हम देखते हैं कि उसकी हड्डी टूट गई, सबसे पहले आप उसकी हड्डी को उसके नेचुरल स्टेटस पे लाना चाहते हैं और नेचुरल स्टेटस पे लाने के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोसेसेस यूज करते हैं, कोई रॉड डालते हैं, कोई प्लेट्स डालते हैं और उसके बाद उसको यही तलकीन करते हैं कि इसके ऊपर फिजियोथेरेपी की जाए, इस अंदाज से मालिश की जाए कि वो ऑर्गन का वो हिस्सा जो अब नेचुरल वे पर काम नहीं कर रहा था दोबारा फितरी अंदाज पर आके ही आपको साथ दे आपका और दोबारा से काम करना शुरू कर दे।
बिल्कुल।
मदनी चैनल के नाजरीन आज हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में यानी इंजीनियरिंग की मसनूआत में घिरे हुए हैं। Then these engineering products have emerged after years of research, experience and hard work by well-trained individuals. ये तमाम मसनूआत computer, car, refrigerator, aircraft, बिलाशुबा इन सब से हमारी life में हमारी जिंदगी में आसानी आई। But this nature is a big classroom. ये सब कुछ ये दुनिया आबशारें पहाड़ सब्जाजार इसमें हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत ज्यादा निशानियां मौजूद है और ये तमाम कुछ जो हमने बनाया दर हकीकत नेचर के इन डिजाइन से इंस्पायर होकर ही बनाया गया, वो असल है और ये नकल है। अली भाई आप प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं, कुछ मिसालें इसमें हमसे शेयर करेंगे आप।
जो कॉमन डेली लाइफ की यूजेज की एग्जाम्पल है कैमरा, तो कैमरा जो है ये ह्यूमन आई से जो है इसका बेसिकली आइडिया लिया गया जिससे इसको इन्वेंट किया गया। इसी तरह एयरक्राफ्ट हैं या एयरप्लेन हैं तो वो बर्ड की जो फ्लाइट है जो परिंदा उड़ता है उससे जो है वो इंस्पिरेशन लेके उससे आइडिया लिया गया और उसी के रूल के अकॉर्डिंगली इसको इन्वेंट किया गया। इसी तरह शिप्स हैं जैसे जो सी में चलते हैं तो उसमें जो सोनार टेक्नोलॉजी यूज होती है टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट्स और एनी हर्डल्स जो के रास्ते में आ रही है तो उसके लिए डॉल्फिन और बैट इनकी जो मूवमेंट है, डॉल्फिन जो जब पानी में तैर रही है या जो बैट हवा में उड़ रही है तो उनका जो फिनोमिना है कि वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उस साउंड से जो इको जनरेट होता है उस इको से वो कैलकुलेशन होती है कि रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा और फिर उस इको से कैलकुलेशन लेते हुए वो आइडिया लेते हुए बैट और डॉल्फिन जो
जानवर हैं इनकी विजन इतनी नहीं होती तो ये अपने रास्ते को उससे डिटेक्ट करती हैं। और इससे क्या इंस्पायर किया गया,
इससे सोनार टेक्नोलॉजी डेवलप की जो कि शिप्स में यूज होती है कि समंदर में किसी ऑब्जेक्ट से जो है ये कोलिजन ना हो जाए, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट की डिटेक्शन होती है।
मैं भी एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि अली भाई ने कहा कि साइंस इज बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर, साइंस कुदरत से फितरत से मिसालें लेकर फिर एक इन्वेंशन एक इजाद नई क्रिएट करती है। तो एक एग्जाम्पल इसमें हमारे पास बुलेट ट्रेन की भी है। बुलेट ट्रेन ये बहुत ही तेजी से मूव करने वाली ट्रेन है जो कि 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी मूव कर सकती है। जब कोई चीज इतनी तेज रफ्तारी से मूव करती है तो उसके इर्द गिर्द की फजा और हवा तेजी से अपनी जगह छोड़ेगी और इससे नॉइज वेव्स क्रिएट होंगी, बहुत ज्यादा शोर क्रिएट होगा। अब इस शोर को रिड्यूस करने के लिए साइंसदानों ने इसका सोचा कि कैसे इसको रिड्यूस किया जाए, तो इसकी इंस्पिरेशन ली गई किंग फिशर नामी एक परिंदे से। किंग फिशर एक छोटा सा परिंदा है जो कि समंदर से मछलियां पकड़ता है। इसकी चोंच सिर्फ 4 इंच की होती है। ये अपनी 4 इंच की चोंच से समंदर में वैसे गोता लगाता है और मछली निकालता है। इसकी चोंच का डिजाइन ऐसा है कि चोंच पानी के अंदर जाती है तो लहर रिपल बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता, इस तरह से इसका डिजाइन है। तो यहीं से इंस्पायर होकर उन्होंने बुलेट ट्रेन का डिजाइन इस तरह से बनाया कि ये ट्रेन जब हवा के अंदर मूव करे तो वेव्स क्रिएट ना हो। और अब उसका डिजाइन ऐसा, अब ये समझ लें कि किंग फिशर की एक बड़ी सी स्टील की चोंच है, जब हवा में मूव करती है वेव्स क्रिएट नहीं होती और शोर पैदा नहीं।
अकील भाई यहीं पर ये चीज भी है कि बस और गाड़ी का डिजाइन भी ये फर्क होता है कि बस का आगा जो जिसको माथा आप कह सकते हैं वो जरा बड़ा होता है, उसके ऊपर एयर कलिजन होती है और उसकी स्पीड वो नहीं हो पाती, जबकि गाड़ी का जो है वो
एरोडायनामिक
एरोडायनामिक स्टाइल होता है, चोंच की तरह का होता है, गाड़ी के ऊपर हवा फिसल जाती है और वो स्पीड से जा सकती है,
ड्रैग कम मिलता है।
जैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं एक और इंटरेस्टिंग जो है वो नेचर की जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक रिसर्च है बार टेल्ड गॉडविट के नाम से रिसर्च है, एक परिंदा है जो कि अलास्का से उड़ता है और 11,500 किलोमीटर की फ्लाइट लेने के बाद न्यूजीलैंड में ये उतरता है। और इसको नेम किया जाता है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप माइग्रेशन फ्लाइट के नाम से। अब ये परिंदा जो है ये
सबसे बड़ी जो परिंदों की हिजरत होती है उसकी फ्लाइट ये होती है जो कि ये अलास्का से न्यूजीलैंड तक करता है।
और ये स्वान भी ये परिंदा कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, इसका साइज जो है 16 इंच का ये परिंदा है। और इसके बारे में रिसर्च ये कहती है कि जी इसका आधा दिमाग जागता है और आधा सोता है, फिर आधा जागता है और आधा सोता है, और ये कंटिन्यूसली फ्लाइट करता रहता है। और जब ये अपनी ये फ्लाइट पूरी करने के बाद जमीन पे उतरता है तो इसकी बॉडी के 50% फैट्स जो हैं वो इस एफर्ट में यूज हो चुके होते हैं। इस परिंदे के नीचे से समंदर, सहरा, जमीन जो है वो गुजर रही है, तूफानों को, बारिशों को, आंधियों को इसने बियर करना है और बगैर किसी स्टॉप के इसने अपनी डेस्टिनेशन पे उतरना है। ये भी एक नेचर का
यानी इसका
है। ये, जो है वो एक चीज जो है वो
एक चीज है कि बिल्कुल नेचुरल है और 9 days 9 nights की फ्लाइट है और इतना सफर तय करने के दौरान कोई बजाहिर नेविगेशन नजर नहीं आ रही, कोई कोलिजन नहीं हो रहा, अगर थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो उसको बियर कर रहा है और जाके अपनी डेस्टिनेशन पर उतर रहा है। यहाँ पर मदनी चैनल के नाजरीन, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर नासा लिंगले प्रोजेक्ट एक हुआ था जिसमें गोस्ट प्लेन्स बनाए गए थे, खास किस्म के कुछ जहाज बनाए गए थे, उसमें आउल को इंस्पायर किया गया था, उल्लू को, क्योंकि दीगर जो परिंदे होते हैं उनके जो पर होते हैं उनके एजेस थोड़े शार्प होते हैं, तेज होते हैं उनके किनारे, जबकि जो उल्लू होता है इसके किनारे सॉफ्ट होते हैं। और जब आउल यानी उल्लू अपने शिकार पर हमला करने लगता है तो उसके शिकार को एक सेकंड पहले भी पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है, आता है फौरन अपना काम करके चला जाता है। और उसके इस डिजाइन को इंस्पायर करके खास किस्म के प्लेन्स बनाए गए जिनका नाम गोस्ट प्लेन्स रखा गया। अननेचुरल वेज, गैर फितरी जिंदगी और नेचुरल वेज यानी फितरी जिंदगी। दिस नेचर इज अ बिग क्लासरूम, ये पूरा सामान, ये कायनात हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। और अननेचुरल वे के अंदर एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो हमें अभी दरपेश आ रहा है वो आपसे शेयर करते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। जमीन का दर्जा हरारत प्री इंडस्ट्रियल एरा में, जब जमीन पर इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं थी, सनतें नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, उस वक्त से अब तक जब इंडस्ट्रियां इतनी ज्यादा हो गई, 8.8 degrees centigrade बढ़ चुका है और सन 2052 तक ये 2 degrees centigrade मजीद बढ़ जाएगा। और अगर इसी स्पीड से इंडस्ट्रियलाइजेशन जारी रही तो सन 2080 तक ये 2.8% मजीद बढ़ सकता है। और इस 2% प्लस में क्या होता है, यानी ये जो 2 degrees centigrade बढ़ा इसमें क्या होगा, जमीन पर असरात क्या आएंगे, अ लार्ज बॉडी ऑफ लिटरेचर, एटलीस्ट 34 स्कूल ऑफ साइंसेज यानी 34 लीडिंग रिसर्चेस से हमें बात पता चलती है, मोर ड्राउट इन ड्राउट प्रून एरियाज, ज्यादा कहत पड़ेंगे वहां पे जहां पहले सूरत हाल मजीद खराब है, मोर रेन इन रेनी एरियाज, जहां बारिशें हैं वहां मजीद बारिशें होंगी, मोर एक्सट्रीम वेदर, शदीद आंधियां आएंगी, तूफान होगा, गर्मी की इंतहाई शिद्दत होगी। और ये आज हम देख रहे हैं जमीन में हो रहा है, जिस जिस जगह पर यह था वहां पर ये चीजें शिद्दत के साथ आ रही हैं और ये दोनों तरफ से मुतासिर हो रहा है, यानी एक तरफ से ये इंसान को मुतासिर कर रही है और दूसरी तरफ से इंसान की वजह से ये हो रहा है, गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। और फिर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, पॉल्यूशन है, आज बहुत बड़ा रिस्क है। डॉक्टर साकिब आप ये बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज के अंदर ये जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है, ये गाड़ियों का जो धुआं निकलता है, इससे इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं?
हमारी जिस तरह से गाड़ियां और फैक्ट्रियां और ये सारी चीजें लग रही हैं, हमारी आबो हवा को आलूदा कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां ये वाली मतलब पैदा हो रही हैं। इसके अलावा देखा यह गया कि आजकल इंसान की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हमें मतलब के घरों में और बाकी चीजों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है और इसी स्पीड से जो जंगलात हैं उनको काटा जा रहा है, दरख्तों को काटा जा रहा है, बल्कि उनको लगाने की कोई किसी का जहन भी नहीं है, कोई इस तरफ आते भी नहीं है। तो जब ये जंगलात काटे जाएंगे तो इसमें इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम की डिस्टर्बेंस की वजह से क्लाइमेट चेंज जो आपने बताया कि आबो हवा बदल रही है, सारी चीजें बदल रही हैं, इसका यही वजह है। जो कहत साली और ये सारी चीजें हैं इनमें एक बड़ी वजह ये भी है कि हम गैर फितरी अंदाज में जो जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि हम पानी बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं, अब इस ये पानी जाया कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अब यही सुनने में आ रहा है कि आगे जाके पानी की कमी भी का भी सामना हमें करना पड़ेगा। ये सारी चीजें गैर फितरी हमें अंदाज,
क्लाइमेट चेंज के हवाले से गैर फितरी अंदाज जिंदगी, इस पर मैं भी कुछ शेयर करना चाहूंगा कि کلائمیٹ چینج کی ایک وجہ ہمارا غیر فطری انداز زندگی بھی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب ہم چل کے تھوڑا سا فاصلہ طے کر سکتے ہیں اور یہ پیدل چلنا ہماری زندگی کے لیے صحت کے لیے بہتر بھی ہے, لیکن پھر بھی ہم کار پر, بائک پر پیٹرول جلاتے ہوئے, اسموک اڑاتے ہوئے ہی سفر کرتے ہیں اور یہ غیر فطری انداز اختیار کرتے ہیں جس سے پولوشن زیادہ بڑھتی ہے. ایک اور وجہ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل اکثر کا آج کل یہ بن چکا ہے رات دیر تک جاگنا اور دن گئے تک سوئے رہنا. تو ڈے لائٹ, دن کی جو روشنی ہے, اس کو پراپرلی ہم استعمال نہیں کرتے, بلکہ رات کو جو غیر فطری ان نیچرل لائٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں اور الیکٹریسٹی بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. الیکٹریسٹی پروڈکشن میں بھی پھر کول جلتا ہے, پیٹرولیم پروڈکٹس جلتی ہیں, دھواں کریٹ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کلائمیٹک چینج کی طرف ایڈ کرتی ہیں.
ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر جو انہوں نے بات کی کہ ڈے لائٹ کی یوزیج کم ہے اور نائٹ کو کافی زیادہ بزنسز اور کافی زیادہ جابس بھی اب ایسی آ گئی ہیں جو کہ رات ساری چلتی ہے. آبویسلی اس کے اپنے بینیفٹس ہوں گے جو کہ مختلف صورتوں میں ہوں گے, میڈیکلی اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟
لیکن یہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں گا کہ جس طرح ہم کلاک گھڑی کا استعمال کرتے ہیں, اس پر ڈائل ہوتا ہے, گھڑی چل رہی ہوتی ہے, اسی طرح ایک کلاک انسان کے جسم کے اندر بھی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا. وہ ہمارے سیل کے لیول کے اوپر ایک کلاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا ہے کہ جسم کو پتا ہے کہ کب باہر دن کا وقت ہے, جسم کو پتا ہے کب باہر رات کا وقت ہے. ہمارے سارے ہارمونز اسی کے مطابق سیکریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جسم کا ایک بڑا ہی اہم ہارمون ہے جسے ہم کورٹیسول کہتے ہیں. یہ کورٹیسول ایسا ہارمون ہے کہ جس نے ہمیں باڈی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, باڈی کے اندر گلوکوز لیول کو اس نے بڑھانا ہے تاکہ باڈی ایکٹیو ہو کے اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے, اور اس کے اور بھی بہت سارے ڈھیر سارے اس کے فنکشنز ہیں. تو اس کی جو پیک آتی ہے وہ صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان میں ہوتی ہے, 8 یا 9 کے درمیان میں, اور جو اس کی پھر یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا ڈکلائن آتا ہے جو رات کے وقت جس کا بالکل ڈکلائن ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایسا نظام بنایا ہے کہ صبح کے وقت ہم سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈسٹرب کریں گے, رات کو ہم کام کریں گے, صبح وقت سوئے رہیں گے, تو یہ ہم اس کا الٹا کریں گے اور ہماری ایفیشنسی اتنی نہیں ہوگی. تو پھر ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دوسرا وائٹامن ڈی ہے جو بڑا ضروری ہے ہمارے لیے, اور اس کے لیے ایک سن لائٹ کی طرف سے ہمیں جو الٹرا وائلٹ کچھ خاص ریڈیشنز ملتی ہیں جو ہماری اسکن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور وہ ہمارے وائٹامن ڈی کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتی ہیں. اگر وہ نہیں, ہم اس ایکسپوجر کو ہم نہیں لیتے, ہم اپنے گھر کے اندر ہی رہتے ہیں, باہر نکلتے نہیں ہیں, یا پھر رات کے وقت ایکٹیو رہتے ہیں, اور وہ بھی ظاہر سے رات وقت تو دھوپ ہوتی نہیں ہے, تو دن کے وقت ہم گھر کے اندر سوئے رہتے ہیں, تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں بلکہ آپ کا قوت مدافعت کا نظام بھی کمزور ہو جاتا ہے.
ایک تو ڈے لائٹ کو آپ نے وائٹامن ڈی سے ریلیٹ کیا, یہاں پر تو وہ بھی ہوگا کہ ایک وقت تھا جب بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور مختلف قسم کی سرگرمیوں میں انوالو رہتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, اور سورج کی روشنی ان کو ملتی ہے, تازہ ہوا ان کو ملتی ہے, لیکن اب یہ رجحان زیادہ گیجٹس کے اوپر آ گیا. وہی سرگرمیاں اب موبائل فون کے اوپر ہو رہی ہیں, وہی سرگرمیاں اب کمپیوٹرز کے اوپر ہو رہی ہیں, تو اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے.
جی بالکل, ہم نے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو بھی انڈور کے اندر محدود کر لیا ہے کہ ہمارے یہ بند گھر ہیں. اب گھروں کے اندر بھی صحن بہت کم دیکھنے میں ملتے ہیں, بالکل بند ہوتے ہیں, سورج کی روشنی بھی اندر بہت کم آتی ہے, اس سے اب مطلب جانا گرمی نہ آئے اس سے بچایا جاتا ہے. پھر گھر سے ایکٹیویٹی خود بھی باہر کم جا رہے ہیں, بچوں کو بھی باہر کم بھیج رہے ہیں, وہ گھر کے اندر ہی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, گیجٹس پہ لگے ہوئے ہیں, کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, گھر کی کھڑکیاں تک ہم کم کھولتے ہیں, اے سی چل رہا ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے, وہ انوائرمنٹ کو کول رکھ رہا ہے, لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری جو انوائرمنٹ کے اندر جو ایئر ہے وہ وہی کی وہی ہے, وہ چینج ہی نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے جراثیم اس کے اندر گرو کر رہے ہیں, وہ پولیوٹ ہو رہی ہے, فریش ایئر ہمارے گھروں کے اندر نہیں آ رہی. تو ایک اندازے کے مطابق ہمارے اکثر جو گھر ہیں ماڈرن دور کے اندر, ان کے جو اندر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ باہر سے زیادہ پولیوٹیڈ ہے, کیونکہ وہ کھڑکیاں ہی نہیں کھولتے, ایئر کنڈیشنر چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, اسی میں وہ پڑے ہوئے ہیں, رات کو کام کر رہے ہیں, جن کو سوئے ہوئے ہیں, نہ کھڑکیاں کھولتے ہیں, نہ اپنی تازہ ہوا کو اندر آنے کے لیے دیتے ہیں, نہ خود باہر جاتے ہیں, نہ ہی بچے جو ہے نا وہ باہر جاتے ہیں. بچوں کے جو کمرے ہیں, خاص طور پہ بچوں کے کمرے گھر کے کمروں میں سب سے زیادہ پولیوٹیڈ ہیں, جس کی وجہ سے ان کے اندر ایسما یعنی کہ دمے کا مرض ہے نا, اس کی مقدار بڑھ رہی ہے. پھر تیز جب وہ سورج کی سن لائٹ کو نہیں دیکھتے, وہ جو آرٹیفیشل لائٹ ہے صرف اسی کو دیکھتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کے اندر ڈپریشن اور اینزائٹی کا بڑھ رہا ہے.
بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ ایڈ کروں گا کہ یو ایس کی ایک ایجنسی جس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی بولتے ہیں, جو گھر کا آب و ہوا ہے جس میں جو گھر کے اندر ہے وہ 2 to 5 टाइम्स यानी कि 2 से 5 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड है एज कम्पेयर टू जो बाहर की आबो हवा है,
यानी घर के अंदर की जो आलूदगी है, जो हवा में गंदे अनासर हैं, वो बाहर से ज्यादा हो चुके हैं,
2 से 5 गुना ज्यादा
हो चुके
और इसकी वजह से घर के जो एक कॉमन बीमारी है नजला जुकाम वगैरह, वो घर के अंदर इसी वजह 90% कहते हैं कि घर के अंदर जो पॉल्यूशन जो आबो हवा है उसकी वजह से होता है, 90% चांसेस होते हैं वो घर के अंदर से एक्वायर यानी कि क्लोज स्पेस यानी कि क्लोज जगहों से एक्वायर की जाती है, उसकी वजह ये कि अंदर का जो आबो हवा है वो बहुत ज्यादा आलूदा।
डॉक्टर साहब ये चीजें बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी देखी जाती है,
बड़ों में भी देखी जाती है, तो इसकी बेसिक वजह डॉक्टर साहब ने बड़ा क्लियर बताया कि हम अपने घरों के अंदर ज्यादा टाइम गुजारते हैं और उसके अलावा घरों के जो खिड़कियां वगैरह हैं उनको यूज नहीं करते, एग्जॉस्ट फैन है उनका यूज नहीं किया जाता, तो ये सारी चीजें जो है ना इनडोर रहते हैं इनकी वजह से ये सारी चीजें,
यानी हम सादा अल्फाज में कहें तो अगर हम फितरी अंदाजे जिंदगी अपनाएं नेचुरल वे में, डे लाइट अल्लाह ताला ने धूप हमें अता फरमाई है, नेमत है, दिन के वक्त जागें, अपनी खिड़कियां खुली रखें, घर में धूप को भी आने दें, फ्रेश एयर भी हमारे घरों में आए, तो घर की जो पोल्यूटेड एयर है वो भी फ्रेश हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात हो रही तो इस पर मैं एक वो भी रिसर्च भी शेयर करना चाहूंगा आपसे कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हमारे गैर फितरी अंदाजे जिंदगी की वजह से हम पोल्यूशन इतना क्रिएट कर रहे होते हैं, घरों के अंदर भी पोल्यूशन है, घरों से बाहर भी पोल्यूशन है।
डॉक्टर साहब ने बताया घरों के अंदर वाली ज्यादा हो गई,
पोल्यूशन ज्यादा हो गई हुई है। अब जो घरों के अंदर की पोल्यूशन है ये तो बिल्कुल घर बंद रहने की वजह से, घरों के बाहर की जो पोल्यूशन है उसकी वजह ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी क्या, हमारा कारों के अंदर फॉसिल फ्यूल्स जलाना, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के अंदर करने के लिए फ्यूल जलाना, कोयला जलाना, जब भी कंबस्शन होती है कोई चीज जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें जनरेट होती हैं, ये जमीन के ऊपर एक ब्लैंकेट क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से जमीन का टेम्परेचर बाहर नहीं निकल पाता। अब एक रिसर्च के मुताबिक पिछले 25 सालों में इंसानों ने इस पोल्यूशन की वजह से जमीन के टोटल जंगलात का 10वां हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया है, और अगर इसी स्पीड से पोल्यूशन क्रिएट होती रही तो अगले 100 सालों में जमीन में एक जंगल भी बाकी नहीं रहेगा। तो ये इतनी
ये जो हमारे पास इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशंस हैं, दोनों असर है, एक हम भी असर डाल रहे हैं और दूसरा वो हम पर असर डाल रहे हैं,
हम पर भी।
मदनी चैनल के नाजरीन यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इस वक्त 6 बिलियन किलो कूड़ा समुद्रों में हर साल फेंका जाता है, यानी 6 अरब टन कूड़ा ये जंगलों में फेंका जाता है और इसका बड़ा हिस्सा प्लास्टिक पर मुश्तमिल होता है। आज यूके के अंदर एक रिसर्च के मुताबिक अगर 3 मछलियां पकड़ी जाएं तो उसमें एक मछली के अंदर प्लास्टिक के ट्रेसेस जरूर होंगे और 700 से ज्यादा समुद्री मखलूक ये प्लास्टिक से मुतासिर होती है। क्यों? इसलिए कि उनका जो कुदरती खाना है वो उसकी हैयत प्लास्टिक जैसी है, वो उसको समझते हैं कि हमारा खाना ही है, जब वो खा लेते हैं उनके लंग्स में वो फंस जाता है और इससे नुकसान होता है। और इसके साथ साथ ये जो हम खाना खाते हैं, अब खाना इतना ज्यादा मिकदार में होता है, कभी शादी पर, कभी बूफे के नाम पर, और यहां पर एक रिसर्च मेरे पास है कि तकरीबन 1.3 अरब टन खाना ये जाया हो जाता है, जो कि 1 अरब लोगों के लिए बहुत काफी है, और हर 9 में से एक इंसान दुनिया में खाली पेट बिस्तर पर जाता है। अगर हम इसको प्रॉपरली यूज करें, इसको प्रॉपरली किसी जगह पर खपाएं या खाना ही उतना बनाएं जितना खाना हो, एक टाइम के अंदर वो बचे ही ना, तो उससे ज्यादा तरकीब अच्छी होगी। और जिस तरह अकील भाई ने भी शेयर किया इन एनर्जी कंजम्पशन का इशू, ये बहुत ग्रेव है, पानी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, अली भाई आप इंजीनियर हैं, इस हवाले से शेयर कीजिएगा कि एनर्जी की जो कंजम्पशन है और इसके रिसोर्सेज हैं, इसके हवाले से ग्लोबल वार्मिंग पे इंपैक्ट क्या है और उसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं।
हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो एनर्जी के गेट करने के वेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, मिनरल्स हैं, जो हमारे पास क्रूड ऑयल है, ऑटोमोबाइल्स चल रही हैं, इनके लिए जो फ्यूल जनरेट होना है वो क्रूड ऑयल से है, क्रूड ऑयल कम होता जा रहा है। हमारे पास जो वाटर के सोर्सेज हैं वो कम होते जा रही हैं, ग्लेशियर्स जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लेशियर्स टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ग्लेशियर्स का जो पिघलने का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो चुका है, उसकी वजह से जो क्या है हमारे पास जो वाटर के सोर्सेज है वो भी कम होते जा रहे हैं।
एक तरफ ऑयल है तो ऑयल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और एक तरफ पानी बहुत बड़ा रिसोर्स है तो वो भी बहुत यूज,
ऑयल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एटमॉस्फेयर का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आ रहा है, हमारे पास डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलात कम होते जा रहे हैं, बारिशें कम हो रही है, पानी के जो रिजर्वायर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, और जो मिनरल्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स में या फूड में जो मिनरल अवेलेबल हैं वो भी कम होते जा रहे हैं इनकी वजह से, और ये सारे जो है वो ओवरऑल एक इम्पैक्ट उसी ग्लोबल वार्मिंग है। और एंड पे अगर बात आएगी तो फिर वही जो अननेचुरल वे है हमारा कि जिसकी वजह से जो हम नेचुरल चीजों से दूर जाते जा रहे हैं, अननेचुरल वे
रिसोर्सेज की कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं,
रिसोर्सेज की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रही है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। मतलब एक वाटर के रिजर्वॉयर्स की अगर हम बात करें, वो अगर अगले 1000 साल के लिए अवेलेबल है, तो अगर उनकी कंजप्शन इतनी ज्यादा हो रही है कि वो 1000 साल की जगह 200 साल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे।
और आज ऐसी सिचुएशन का हमें सामना है, यानी मुख्तलिफ ऐसी जगह है जिनके बारे में हम सुनते और पढ़ते रहते हैं, जहां पर पोर्टेबल यानी ड्रिंकेबल पीने वाला पानी अवेलेबल नहीं,
अभी अवेलेबल नहीं है उधर, वो या परचेज करना पड़ेगा या किसी दूसरी जगह
ज्यादा सफर करना पड़ेगा।
एग्जैक्टली ऐसा ही है, उधर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब जैसे हमें अभी अल्लाह का शुक्र अवेलेबल है कि हम घर में हमें मिल जाता है, तो वैसे नहीं अवेलेबल उधर, आपको दूसरी जगह से परचेज करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा।
इसमें एनर्जी कंजर्वेशन में मैं एक तहकीकाती इदारे की रिकमेंडेशन पढ़ रहा था, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी दो रिकमेंडेशन दी कि गाड़ी कम चलाएं और ज्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। जहां आपने डेस्टिनेशन पे मंजिल पे जाना है, गाड़ी को दूर पार्क करें, पैदल चलने की आदत बनाएं, फितरी अंदाजे जिंदगी अपनाएं। और दूसरा ये था दिन के वक्त काम करें, दिन के वक्त जागे और रात के वक्त आराम करें।
बात शेयर करता चलूं कि अगर कोई 1 मील तक पैदल चले और गाड़ी बाइक का इस्तेमाल ना करे, तो वो 1 पाउंड आलूदगी से आबो हवा को बचा लेता है।
तो फितरी अंदाजे जिंदगी अपनाए, नेचुरल वे ऑफ लाइफ हम गुजारें। तो इसी तरह से दूसरी रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी हुई थी कि दिन के वक्त काम करें, डे लाइट को यूज करें, डे लाइट को यूज करेंगे, रात के वक्त हमारी डेकोरेशन की लाइट, हमारी दुकानों की, हमारी इंडस्ट्री की, हमारे घरों की लाइट, जब हम आराम कर रहे होंगे तो ये लाइट्स इस्तेमाल नहीं होंगी, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी,
यानी वो जो एनर्जी है वो हम उसको प्रोक्योर कर सकते हैं।
और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर ये कानून बने हुए हैं कि जो मार्केट्स हैं वो जब सूरज ग्रूब होता है उस वक्त बंद हो जाती है। तो बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पे ऐसी चीजें हैं कि जो इमरजेंसी नीड्स वाली नहीं है, जो रेगुलर इस्तेमाल वाली चीजें हैं, ग्रोसरी के आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, इस तरह की चीजें जो हैं वो रात को 8 बजे बंद हो जाएंगी। और उनका ऐसा निजाम है कि उस टाइम लिमिट के बाद कोई बंदा उनको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरीके से उन लोगों ने अपनी जो नेचुरल लाइट है उसको यूज किया, उनकी जो आर्टिफिशियल लाइट पे जो एनर्जी यूज होनी थी उसको भी कंजर्व कर लिया, और अपने आप को डे लाइट पे जब उन्हें एक्सपोज किया तो अपनी बॉडी की जो उनकी नेचुरल जो उनका उसका फंक्शन था उसको भी उन्होंने मेंटेन किया।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डॉक्टर सामन ने शेयर किया, आज भी देहातों में और गांव के अंदर यही तर्ज जिंदगी हमें मिलता है कि वहां पर जितने भी अहले खाना है, जितने भी अफराद घर के हैं, उनका खास टाइम सेट है, सूरज ग्रूब होता है, सो जाते हैं, और फिर बिल्कुल तहज्जुद के वक्त, क्योंकि अक्सर औकात फसलों को पानी वगैरह देना या वाई बीजी करना, बीज बोना और वो जो सारे उसके मामलात होते हैं ज़रात के, वो फजर से पहले तहज्जुद के वक्त शुरू करते हैं। ये अंदाज़े ज़िंदगी फितरी है।
जी बिल्कुल, ये जो गांव जो देहाती एरिया हैं, जो गांव के एरिया हैं, उनमें अभी भी काफ़ी हद तक फितरी ज़िंदगी को मतलब के यूज़ किया जाता है, फॉलो किया जाता है। उसमें जी अपनी मिसाल दी, वहाँ पर खेती बाड़ियाँ लोग करते हैं, खेती बाड़ियाँ वो दिन की मतलब रोशनी में इन्होंने करनी होती हैं, तो उनका सारा जो साइकिल है, सारा क्लॉक उन्होंने अपना उसी तरह सेट किया होता है। यानी कि इशा की नमाज पढ़ेंगे, इशा की नमाज पढ़ने के बाद फौरन सो जाएंगे, फिर सुबह कुछ लोग तहज्जुद में उठ जाते हैं, उन्होंने अपने घर के कुछ काम काज करने होते हैं, जैसे खवातीन है उन्होंने घर में कुछ ऐसे काम होते हैं जो सुबह के टाइम हो सकते हैं। इसके अलावा लोगों ने जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं या कोई इस तरह का है, तो उन्होंने सुबह सुबह फजर के टाइमों में या फजर से पहले उठना है, जाग भैंसों को चारा डालना है, वहां पे उनका दूध निकालना है, ये सारा चीजें इनको अर्ली करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम गुजर जाएगा फिर वो उनका जो भैंसों का साइकिल है वो उसके
साथ। यहाँ पर एक ये होता है कि उनका साइकिल तो वही चल रहा है जनरेशन से, उनके बाप दादा करते चले जा रहे हैं, लेकिन अब उनकी जो जनरेशन वो विलेज को छोड़ के आ जाती है, वो दोबारा किसी और साइकिल में आ जाती है।
तो ये कि जो अब मतलब के व्यूज में भी काफी ये एक्सपीरियंस होगा कि गांव में वो जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट एनवायरमेंट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, शहरों में बहुत ज्यादा डिफरेंट
होता है। ख्वाहिश होती है गांव में जाएं,
और ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि गांव में जाएं, वहाँ ताजा आबो हवा है, ताजा फ्रेशनेस है, ये है सारा, उसकी यही वजह कि वहाँ पे अभी भी फितरी जिंदगी को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। और रिजर्वर के हवाले से जो बात हो रही थी उसमें यही चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मदनी चैनल को भी मैं व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा कि जो हम अगर अपनी जिंदगी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, हम मतलब एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश करें, उसमें हम अगर देहांत चीजों का इस्तेमाल करें तो हम काफी हद तक जो है ना उस नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल है कि पानी है, अब देखा ये जाता है कि ब्रश करते हुए टूटी खुली हुई है तो पानी बह ही जा रहा है, और एवरेज में पता नहीं कितने लीटर्स वो पानी जाया कर देते हैं। तो ये अगर हम बंद करके ब्रश करें या मिसवाक करें, फिर उसके बाद जब यूज जरूरत हो तो दोबारा खोलें, हम पानी को बचा सकते हैं। इसी तरह गाड़ी धोते हुए, बाइक धोते हुए हम जो है ना वो शावर या फुहारे से वो चला रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा लीटर्स पानी जाया था। वही हम बकेट से हम कर सकते हैं, यानी कि एक बाल्टी में रख के वही कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हम मतलब कि अपने अंदर चेंज लाएं, एक इंडिविजुअल एक फर्दी तौर पर अगर हम चेंज लाएं अपनी जिंदगी के अंदर, ये सारी चीजों को देखें, तो बहुत ज्यादा जो हम
ताकि भाई यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। एक तो वो अर्थ किया कि अगर कोई एक मील तक पैदल चले, गाड़ी और बाइक का इस्तेमाल ना करे, तो वो एक पाउंड आलूदगी से आबो हवा को बचाता है। इसी तरह कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद शट डाउन कर दें, इससे 85% बिजली आप बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और एक रीयूजेबल बैग, यानी कपड़े का बैग, आमतौर पर देखा भी जाता है हमारे बड़े, वो एक कपड़े का बैग पास होता था, उसी को यूज करते थे, उसी में तरकारी आ रही है, उसी में सब्जी आ रही है, उसी में दालें आ रही हैं,
थैला खा जाता है,
थैला खा जाता था, वो साइकिल के आगे लटक रहा होता था या बाइक के आगे लटक रहा होता था, और वो उस शख्सियत की पर्सनैलिटी का एक हिस्सा भी समझा जाता था कि ये आएंगे तो थैला साथ होगा। लेकिन उसका आप यूज देखिए और उसका बेनिफिट देखिए कि अगर एक कपड़े का बैग इस्तेमाल किया जाए और बार बार इस्तेमाल हुआ जाए, यानी वो कपड़े का बैग अपनी उम्र तक इस्तेमाल हो जितनी उसकी उम्र है, तो आप 600 से ज्यादा प्लास्टिक बैग बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और किस कदर आपने फेवर दी एनवायरनमेंट को कि अगर आज मोहनजोदड़ो के अंदर, यानी ये वो तहजीबें मैं बता रहा हूं जो इंसान ने अभी खोदी और देखा कि ये सबसे पुरानी तहजीबें, इंसान सबसे पुराना यहां रहता था, इंडस वैली हो गई, उसके बारे में कहा जाता है अगर उस दौर में भी प्लास्टिक बैग होता तो आज जब हमने वो खंडरात को खोदा है वहां भी सर सर की आवाज आ रही होती, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये दूसरी चीजों की तरह मट्टी में घुलकर मट्टी नहीं हो जाता, बल्कि ये वैसे ही रहता है। अब तहकीकात हो रही है, यानी अब ऐसे बैग्स बनाए जा रहे हैं जो कि बजाय तो प्लास्टिक के लगेंगे लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, और अगर उन बैग्स को समुंदर में भी फेंक दिया जाएगा तो मतलब वो इस चीज के बने होंगे कि समुंदर के मखलूक जब उसको खाएंगे तो वो उनकी खुराक का भी काम देंगे। इसी तरह एक बोतल का कैन जो इस्तेमाल किया जाता है, वैसे तो बोतल पीनी ही नहीं चाहिए लेकिन उसका जो कैन हम यूज करते हैं, अगर उसको रिसाइकल कर दिया जाए, दोबारा इस्तेमाल में ले आए, तो ये इतनी बिजली पैदा कर सकता है कि टीवी 3 घंटे तक चल सकता है। और जो साकिब भाई फरमा रहे थे अभी कि ब्रश करते वक्त और गाड़ी धोते वक्त पानी बचाएं, साकिब भाई एज पर स्टेटिस्टिक्स अगर ब्रश करते वक्त पानी खुला छोड़ दिया जाए तो 10 लीटर तक पानी जाया हो सकता है, और अगर गाड़ी धोते वक्त एहतियात ना की जाए तो 100 लीटर पानी हम जाया कर देते हैं। और उसका बड़ा बेहतरीन तरीका वो बकेट्स का इस्तेमाल जो आपने बताया। और एक और फितरी और गैर फितरी जिंदगी के अंदर जो बहुत अहम चीज हमारे पास है वो है जनरेशन गैप। दिस इज अ वेरी डिस्कसेबल टॉपिक नाउअडेज। रवायत है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ये बात सबसे ज्यादा पसंद है कि बंदा मोमिन अपने बीवी बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाए, क्योंकि जब वो दस्तरखान पर जमा होते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको रहमत की निगाह से देखता है और जुदा होने से पहले पहले उन सबको बख्श देता है। और आज के दौर में जब हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं, यानी किसी के पास मोबाइल फोन है, किसी के पास टैबलेट है, मिलकर बैठ के खाने से बहुत बरकत होती है। और अब उस बच्चे को यह मौका भी मिल जाता है कि वो मशीन से थोड़ा सर उठाए और अपने वालिदैन की तरफ नजर कर ले, वालिदैन की तरफ जो नजर करेगा उसको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और फिर ये बात भी रिसर्च से साबित है कि जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है, उनकी वोकैबुलरी ज्यादा होती है, उनके पास अल्फाज का जखीरा ज्यादा होता है। और दोनों तरफ से आजकल ये इतराज हो रहा है, बड़ों को ये इतराज है कि छोटे इज्जत नहीं करते और छोटे ये कहते हैं कि उनको हमारी जरूरियात का अंदाजा नहीं है, जमाना बदल रहा है। मेरे मीठे साईं भाइयों, यकीनन खुश रहना चाहते हैं, हर बंदा ये चाहता है कि वो खुश रहे। आइए मैं आपसे एक रिसर्च शेयर करता हूं। 90 साल से ये रिसर्च हो रही है और अभी तक जारी है। 1000 अफराद पर यह रिसर्च की गई, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ अभी तक जिंदा हैं, कुछ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर, मुख्तलिफ रैंक के ऊपर, मुख्तलिफ शोभा जात से वाबस्ता हैं, लेकिन ये जो रिसर्च कर रहा है इदारा वो अभी तक उन सब से वाबस्ता है, राबते में रखता है, उनको शेयर करता रहता है, उनसे पूछता रहता है। और रिसर्च का मौजू सिर्फ एक है, क्या खुश कैसे रहा जा सकता है। और इतनी तवील रिसर्च के बाद उन्होंने जो नतीजा निकाला, मदनी चैनल के नाजरीन मैं आपसे शेयर करता हूं। नतीजा ये है कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक किया जाए, ट्रीट योर क्लोजेस्ट रिलेशन गुड, उनके साथ रहना, उनके साथ दुख सुख शेयर करना, सोशलाइज होना, خوش و خرم رہنا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ وہاں ہو رہی ہے جہاں پہ غیر مسلم آبادی زیادہ ہے, سارا سیٹ اپ غیر مسلم ہے, اور وہاں پر فیملی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس ادارے کے سی ای او نے, یعنی اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے, اس نے آخر میں یہ جملہ کہا بڑے ہی دکھی دل کے ساتھ کہ اٹھیے اپنی ماں کو کال کر لیجئے جس سے اتنا عرصہ ہوا آپ نے بات نہیں کی, اپنی بہن کو اپنے بھائی کو کال کیجئے جس کو آپ بھول چکے ہیں, اپنے والد صاحب سے ملیے جو اولڈ ہوم میں اور اولڈ ہاؤس میں جہاں پر بوڑھے لوگوں کو رکھا جاتا ہے وہاں پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں. اب یہ وہ معاشرہ ہے جہاں گھر کے اندر پالتو جانور ہونے کے چانسز تو 65% ہیں لیکن سکا باب ہونے کے چانسز وہ 10% سے بھی کم ہیں. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ایک ایسی چیز ہے رشتہ داریاں اور محبت اور سلوک سے رہنا کہ اس سے جسمانی درد بھی کم محسوس ہوتا ہے, یعنی پین کی شدت کا بھی احساس کم ہو جاتا ہے, قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے
کہ عید کا دن ہے, ہمارے کون کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے ہم آج بھی نہیں مل رہے, جنہیں ہم آج عید کے موقع پہ بھی ان کو فون کر کے عید مبارک کا پیغام نہیں لے رہے, جن کے گھر میں بھی ہم نہیں جا رہے, جن کو ہم نے ایک پیغام تک کسی کے ہاتھ بھی نہیں بھجوایا عید کا, ناراضگی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. اسی طریقے سے بیٹا یہ غور کرے کہ عید کے دن میں نے اپنے والد صاحب اور اپنی والدہ صاحبہ سے ان کے گھر جا کر ان سے ملا ہوں یا نہیں ملا ہوں, اور بچہ یہ غور کرے کہ میں عید کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ وقت زیادہ گزار رہا ہوں یا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ان کے ہاتھ چوم کر میں نے ان کو عید کی مبارکباد دی.
یعنی یہ چیز ایسی ہے جو کہ بہت زیادہ فیل کی جاتی ہے اور عید کے دنوں میں سوشلائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے.
لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس گیجٹس آ گئے, ہمارے پاس سوشل میڈیا اور دیگر ڈیوائسز آ گئی ہیں, ہم ایک میسج کر کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا ہے, ہم نے لوگوں سے جو عید مبارک کرنی تھی وہ ایک پوسٹ کر کے ہم نے سارے کا سارا حق ادا کر دیا. جبکہ ایسا نہیں ہے, جب آپ عید کے دن اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں, ان سے عید مبارک دیتے ہیں, ان کو عید مبارک وصول بھی کرتے ہیں, تو ان ساری چیزوں سے دل کے اندر ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے اور ایسا ڈپریشن انسان کا ریلیز ہوتا ہے, اینزائٹی ریلیز ہوتی ہے, پریشانیاں ریلیز ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں سارے غم بھول جاتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو چینجز آتی ہیں جبکہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا.
یہاں پر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی عین فطری رد عمل ہے, انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ مل جل کر رہے, یہ پیار محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا کیا ہے. تو ہم فطری رویوں کو اپنے اندر باقی رکھیں, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کو باقی رکھیں. اچھا, ابھی ایک میرے بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اتنی دیر سے ہم فطری انداز زندگی اپنانے پر گفتگو کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں ایک زندگی کا حصہ میں نے ان نیچرل وے میں گزارا, میں ریڈی میڈ کھانا کھانے کا عادی ہوں, ہر وقت اے سی میں رہنے کا عادی ہوں, اب مجھے اگر میں چاہوں کہ میں دھوپ میں رہوں, میں گرمی میں رہوں, میں اے سی کم یوز کروں, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک میں ریسرچ آپ سے شیئر کروں گا, ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے, یونیورسٹی آف واشنگٹن کے پروفیسر آف سائیکالوجی ہیں, ان کی ریسرچ ہے کہ انسان کی باڈی اڈاپٹیو ہے, انسان کا جسم اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے اپنے ماحول کے مطابق. ایک آپ نے دیکھا ہوگا وہ شخص جو کہ ساری زندگی گاؤں کے پر فضا اور اچھے صاف ستھرے ماحول میں گزارے, اب اگر وہ کسی وجہ سے شہر میں شفٹ ہو جاتا ہے تو شہر کے پولوشن, نوائز, شور کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو رات کو نیند نہ آئے, اس کی یہاں تک کہ وہ بیمار ہو جائے, لیکن کچھ عرصہ شہر میں گزارنے کے بعد وہ اس کی باڈی اڈاپٹ ہو جاتی ہے, اس کا جسم ڈھل جاتا ہے, اب اس کو بظاہر شور تنگ نہیں کرتا, وہ بیمار ہونا کم ہو جاتا ہے اس کا, وہ اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو شہر کا پولوشن اور شور ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا رہا, یہ غیر فطری شہر کا انداز زندگی اندر ہی اندر اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. لیکن جس طرح ایک شخص فطری سے غیر فطری انداز پر ڈھل سکتا ہے, تو اسی طرح اگر کوشش کی جائے تو وقتی طور پر مشکل ہوگی, ایئر کنڈیشنر سے باہر رہنے میں گرمی زیادہ فیل ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ آپ کو بغیر فریج والا نارمل ٹیمپریچر کا پانی بھی اچھا لگنا شروع ہو جائے گا, بغیر آرٹیفیشل سویٹنر کے دودھ چائے پینا بھی اچھا لگنے لگے گا, اور بغیر ایئر کنڈیشنر کے لائف سٹائل گزارنا یہ بھی آپ کے لیے.
عقیل بھائی نے یہ بات کہی کہ ایئر کنڈیشنر اور یہ آرٹیفیشل ٹی وائٹنرز وغیرہ, اس کے حوالے سے جدید کچھ انویسٹیگیشنز بھی ہوئی ہیں کہ پلاسٹک کی زیادہ استعمال کیا جائے تو اس میں بھی کچھ ایشوز آئے ہیں, اور زیادہ مائکرو ویو کو یوز کیا جائے تو بھی ایشوز آ رہے ہیں, اور ساتھ اگر اس طریقے سے مطلب زندگی کو ڈھال لیا جائے کہ ان غیر فطری اور مصنوعی چیزوں کا سہارا لے کر کھانا پینا رکھا جائے تو اس میں مسائل آ رہے ہیں، اس بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں گے؟
ایسے کھانے استعمال کر رہے ہیں جو پہلے سے بنے ہوتے ہیں اور ان کو یعنی کہ دوبارہ ہیٹ اپ کر کے کھا لیا جاتا ہے، تو یہ غیر فطری زندگی کے جو کچھ پہلو ہیں جو ہماری زندگی کے اندر آ چکے ہیں. اس میں یہ کہ پلاسٹکس کا استعمال، جیسے ہم پلاسٹک کی باٹلز استعمال کرتے ہیں، ان کو بار بار استعمال کریں گے تو اس میں سے کچھ کیمیکلز ایسے ریلیز ہوتے ہیں جو کہ کینسر تک کاز کر سکتے ہیں. کچھ ریسرچ کے مطابق وہ کارسینوجنز ہوتے ہیں. اسی طرح مائکرو ویوز کے اندر جب ہم پلاسٹکس کو گرم کرتے ہیں یا مائکرو ویوز کے اندر جس کی ویوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو کھانا گرم کرتے ہیں وہ ایک نیچرل طریقہ نہیں ہے گرم، یعنی کہ ایک فطری طریقہ نہیں ہے گرم کرنے کا کھانا، تو اس سے جو کچھ کیمیکل کھانے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اس لیے جو ہمارے مطلب کہ آسانی کے لیے جیسے کچھ ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ جو صرف گرم کر کے یا ہیٹ کر کے ہم نے کھا لینے ہوتے ہیں، وہ ویسے تازہ اور فریش نہیں ہوتے. اب وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہم چیزیں کھائیں گے وہ کیمیکل ڈال کے پرزرو کیے ہوتے ہیں، کیمیکل ڈال کے ان کو رکھا ہوتا ہے کہ وہ فریش رہیں، تو جب وہ ہم گرم کر کے کھائیں گے وہی کیمیکل ہمارے جسم کے اندر جائیں گے، وہ مختلف بیماریوں کا سبب بنے گا.
بالکل آپ نے جو بات کی ہے وہ دودھ ہے، اگر وہ دودھ کو نیچرل رکھیں گے تو دودھ تو خراب ہو جائے گا، لیکن وہی دودھ سپر اسٹور کے شیلف کے اوپر پوری دو دو مہینے کی ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ پڑا ہوا ہے، کچھ ڈالا تو پھر وہ پڑا ہے.
بیسک وجہ یہ کہ اس کے اندر کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو اس کی جو فریشنیس برقرار رہے وہ خراب نہ ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک نیچرل چیز نہیں ہے، وہ ایک دودھ جو ہے اگر آپ ایک مہینے بعد پیئیں گے تو وہ ایک نیچرل دودھ کی طرح یا ایک ایسا جوس ہے جو ایک مہینے تک پریزرو ہے وہ ایک نیچرل جوس کی طرح وہ فوائد آپ کے جسم کو کبھی بھی نہیں دے گا.
ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے بات کی تو یہ جوس کے اندر ایک وہ جوس ہو گیا ڈبے والا اور ایک نیچرل جوس ہو گیا، اس حوالے سے کچھ آپ
دیکھیں جو ڈبے کے جوس ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا تو ڈبے کے جوس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صرف 5% جوس ہے. گھر والے بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر میں بچے کو فلاں جوس پلایا تو ہمارا سوال آگے ہوتا ہے جی کہ ڈبے والا جوس تھا، وہ آگے سے کہتے ہیں جی بالکل یہ دیکھیں، تو پھر اسی وقت ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر تو جوس صرف
ہمارے. اس کا حل کیا ہے؟
اس کا حل یہ ہے کہ بچوں کو پھل کھلایا جائے، کیونکہ پھل اگر آپ کھلائیں گے تو اس کے اندر نہ صرف اس کو جو ایکسٹریکٹ ہے اس کا جوس ہے وہ بھی اندر جائے گا بلکہ اس کا جو فائبر ہے،
یعنی یہاں پر اگر تازہ پھل کے جوس کی بھی بات کی جائے تو اس پر بھی آپ پھل کو فوقیت دے رہے ہیں.
پھل کو فوقیت دے رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر نہ صرف جوس اس کے اندر جائے گا بلکہ فائبر بھی اندر جائے گا، اور بہت ساری ایسے پھل ہیں جن کے جو چھلکے ہیں ان کے اندر بھی کچھ وائٹامنز اور کچھ منرلز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر جائیں گے. اگر پھل کو آپ نے اچھی طرح دھویا ہے اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو اس کے چھلکے کے
اندر دامت برکات میں لالیا کی یاد آ گئی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مرشد کا مطیع فرما بردار رکھے. آپ کس قدر ہمیں ہدایت اور تلقین فرماتے ہیں، نصیحتیں فرماتے ہیں کہ آپ نے پھلوں کو اور کئی سبزیوں کے ایسے چھلکے جو ہم عام طور پر پھینک دیتے ہیں ان کو یوز کرنے، اور آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فائدہ ہوتا ہے.
اب میں اس حوالے سے جیسے ایک ڈبے کا جوس اور عام خالص جوس کی میں بات کی، اس طرح ایک ڈبے کا دودھ ہے اور ایک خالص دودھ ہے. اب میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے سارے جو ویورز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ ڈبے کا دودھ جو آپ اپنے بچے کو پلا رہے ہیں، شیر خوار بچے کو جو آپ ڈبے کا دودھ پلا رہے ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے، یہ ماں کے دودھ کا نیچرل دودھ کا یہ اس کا نیم البدل نہیں ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں، کیونکہ اس کو بھی ایک قسم کی دوائی سمجھا جائے کہ صرف چند خاص کنڈیشن کے اندر چند خاص مقامات کے اوپر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. کہ مثال کے طور پر بچہ ہے اس کی والدہ انتقال کر گئی اس کی پیدائش کے دوران، یا کسی وجہ سے ماں اویلیبل ہی نہیں ہے، یا ماں کو کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ مرض بچے کو ہو سکتا ہے، آپ یہ ابھی فی الحال دودھ نہ پلائیں. اور اس کی بھی صرف چند ایک بیماریاں ایسی جن کے اندر ایسا ہے، لیکن میجورٹی آف کنڈیشن کے اندر ماں کا دودھ جو نیچرل چیز ہے وہی اصل چیز ہے، اور اسی سے بچے کو ایسی چیزیں ملیں گی جو ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے.
مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک بچوں کے ڈاکٹر جو پیڈس کے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے ہمیں کتنی بڑی نصیحت فرمائی کہ کوئی بھی ڈبے کا دودھ نیچرل دودھ کا متبادل نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک اور چیز ہم ان سے شیئر کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں جو کہ عام طور پہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو یہ انکوائری ہوتی ہے، اس کے بعد اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دودھ پیئیں، یہ مریضوں کو کہا جاتا ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد صرف خالص دودھ ہوگا یا دودھ کی پروڈکٹس بھی ہو سکتی ہیں جیسے کھیر لسی وغیرہ؟
جی بالکل، جو خالص دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ظاہری سی بات ہے ان کے اندر بھی وہ نیچرل سارے انگریڈینٹس موجود ہیں. اگر خالص دودھ سے آپ کھیر بنا لیں، اگر بچے دودھ نہیں پیتے ہیں तो आप उनको खीर बनाकर दे सकते हैं, आप उनको दही का अगर आप रायता बना लेते हैं उसके अंदर कुछ आप जीरा या कोई और चीज वो आप उसको दे सकते हैं, आप उसका हलवा हलवे के अंदर उसको जो है ना वो डालकर उसके सूरत में आप उसको दे सकते हैं, फिरनी बनाकर आप उसको दे सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजों के अंदर आप उसको दे सकते हैं। इसी तरह बार दफा माँ मतलब पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं बच्चा गोश्त नहीं खाता है, तो आप अब उसको उसके उसके कोई और अल्टरनेटिव की जगह पे आप ऐसा करें कि आप उसको गोश्त से बनी हुई चीजें खिला दें, आप उसको उस गोश्त से बना हुआ कीमा खिला दें, आप गोश्त किसी और चीज के अंदर आपने डाला हुआ है, किसी और डिश के अंदर आपने उसको डाला हुआ है एज इंग्रेडिएंट, अब वो उसको खिला
दें। भाई जो अभी जिस तरह उसामा भाई ने हमें दो चीजों के बारे में बताया, एक दूध और गोश्त के बारे में, कि अगर वो प्योर चीज, क्योंकि ये सवाल भी इनसे इसीलिए किया गया कि बच्चों में शिकायत आती है कि खालिस दूध नहीं पिया जा रहा या गोश्त नहीं, तो उनसे बनाई हुई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। जो उनका महीना है शदीद गर्मियां है, आमतौर पर बच्चे प्योर वाटर भी नहीं पीते, क्या उसमें भी ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है?
उसमें ये कि प्योर वाटर का सब्स्टिट्यूट है इतना ज्यादा कोई भी नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि प्योर वाटर ही पिलाएं, लेकिन अगर वो नहीं पिला सकते तो कुछ ऐसे फल हैं जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे आजकल तरबूज है जिसमें कहते हैं कि 90% से भी ज्यादा, कुछ रिसर्च में 99% वाटर होता है, पानी होता है वो सारा, तो वो बच्चों को अगर पसंद है तो वो आप खिला सकते हैं। इसके अलावा खरबूज है वो आप खिला सकते हैं, इसके अलावा खीरा है, सलाद है, इनके बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी पाया जाता है।
तो आप ऐसा
कोई ऐसी रेसिपी बना दें, कोई सैलड बना दें, उसको मतलब कैसा बना दें कि बच्चा खा ले, तो इसी बहाने वो फल का फल, सब्जी की सब्जी, और वो भी हो जाएगा, और पानी की जो है वो भी उसको अंदर।
लेकिन आपने फरमाया कि बेहतरीन ये है कि पानी दिया जाए। गैर फितरी अंदाज में आज एक बहुत बड़ी चीज वो मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से क्या मुराद है अली भाई, आप शेयर फरमाएं।
स्मार्टफोन से मुराद सुवान भी एक ऐसा मोबाइल फोन है कि जिसमें जो टच स्क्रीन हो, उसमें इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल हो, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जो कि उसको चला रहा हो, और ये मोबाइल फोन एज ए कंप्यूटर काम कर सके। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आज डिफरेंट मोबाइल फोन है जो कि एज ए टच स्मार्टफोन है, आईफोन है, उसमें एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड के फोन हैं तो उनमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास। अब दुनिया भर में 44% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो स्मार्टफोन यूज करी है, तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ ये बनते हैं, और जो इसका लीडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर 6.5 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन मौजूद है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन पे जिनको यूज कर सकते हैं।
स्मार्टफोन मेरे नंदिनी चैनल के नाजरीन आज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का सबब बन रहा है। अभी जो हमने पहले इंडोर्स की बात की कि लोग इंडोर्स रहते हैं, आउटडोर्स नहीं आते, घरों के अंदर बंद हैं, ऑफिस के अंदर बंद हैं, ये अडल्ट के साथ भी है, चिल्ड्रन के साथ भी है। आज एक छोटा सा बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता नहीं है, स्मार्टफोन चलाना उसको आता है, और ये स्मार्टफोन के अंदर जो एप्लीकेशन और जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई वो इसी तरह डेवलप की गई है कि ये यूजर फ्रेंडली हो, यानी जो भी उसको पकड़े उसके लिए उसके अंदर जाना, बहुत अंदर जाना मुश्किल ना हो, वो अंदर से अंदर चाहता चला जाता है, ज्यादा से ज्यादा खुपता चला जाता है, वक्त का पता नहीं चलता, और जब नजरें उठती हैं काम ढेर सारा पड़ा होता है जो करने वाला होता है। मेरे मीठे मीठे साईं भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लाम दीन फितरत है, और यहां एक बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, वो है हलाल और हराम। हलाल में सवाब है, अल्लाह की रजामंदी है, और हलाल में सेहत है, इसके बरक्स हराम, हराम में गुनाह है, अल्लाह की नाराजी है, और हराम में बीमारी है। और ये सजा और जजा का एक ऐसा बैलेंस कॉन्सेप्ट है जो इंसान की नेचर के ऐन मुताबिक है। मेरे मीठे साईं भाइयों, आइए आइए दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब आज हमें यही सबक दे रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अमीर अहले सुन्नत के मानने वाले, आपके पीछे चलने वाले, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता अफराद, आशिकान रसूल की तादाद बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदनी तहरीक के इस बयान तक 104 से ज्यादा शोभा जात है, सोशल मीडिया पर हमारी एक्टिव प्रेजेंस मौजूद है। अगर आप प्रोफेशनल हैं अपनी खिदमात दावत इस्लामी को दीजिए। आईटी का शोभा मौजूद है, पूरी दुनिया में दावत इस्लामी के मदनी काम हो रहे हैं, मस्जिद में दर्स है, कुरान पाक की तालीम का सिलसिला है, एक्टिव वेबसाइट मौजूद है। आइए दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। अल्लाह अज़्ज़ वजल की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह आलिया में उसे कबूल फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। दिन है खुशी का है ईद है नाम है मोमिनों